नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है और इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है जो देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को और आगे बढ़ाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। इस परियोजना का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया है जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का योगदान रहा है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की मुहिम के अनुरूप है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होगा। आज प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह बराक घाटी क्षेत्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सहित अन्य राजनैतिक दल भी मतदाताओं तक पहुंचने के अंतिम प्रयास में राज्य भर में कई रैलियां आयोजित करेंगे। इस बीच तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय ने अलग अलग जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव पर विधिवत विचार और सभी संबंधित पहलुओं के निष्पक्ष आकलन के बाद राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये पहली बार है जब विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना ने मानव रहित हवाई प्रणाली और आत्मघाती ड्रोन क्षेत्रीय प्रणाली की प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई योजनाओं का अनावरण किया। ये पहल मानव रहित हवाई प्रणालियों के क्षेत्र में भारतीय सेना की दीर्घकालिक आवश्यकताओं में स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना ने कहा है कि ये योजनाएं उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को निवेश के तकनीकी प्रयासों को व्यावहारिक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौता करने में विफल रहता है और होर्मुज जल डमरू मध्य तय समय सीमा से पहले नहीं खोलता है तो अमरीका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है। इस बीच ईरान ने युद्ध विराम के अमरीकी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और शत्रुता समाप्त करने, पुनर्निर्माण में सहायता और प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज अपने 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान श्री रहमान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।